नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।